अभिमन्यु इशिका को हॉस्पिटल लेकर आ गया था। इशिका की रिपोर्ट देखकर इंस्पेक्टर माधव और क्रिस्टल को भी यकीन हो गया था कि वो बीमार होने का दिखावा नहीं कर रही थी। इशिका का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था और अभिमन्यु उसके साथ था। इशिका को हॉस्पिटल लाने में देर करने की वजह से डॉक्टर रियांश ने उन सबको डांटा और फिर इशिका के पास रूम में आ गए। वो इशिका की तरफ परेशान चेहरे से देख रहे थे, जिससे लग रहा था कि इशिका और उनके बीच सिर्फ एक डॉक्टर और पेशेंट का ही रिश्ता नहीं था। अभिमन्यु को रियांश का इस तरह इशिका को देखना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने रियांश की तरफ भौंहें उठाकर कहा, डॉक्टर, आपका काम हो गया है तो आप यहां से जा सकते हैं। रियांश के पूरे एटीट्यूड से अभिमन्यु की तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, और तुम कौन होते हो मुझे यहां से बाहर जाने का कहने वाले? मैं उसका डॉक्टर हूं और उसका राखी ब्रदर भी। रियांश के मुंह से ब्रदर शब्द सुनकर अभिमन्यु के चेहरे के भाव सामान्य हो गए। वो खड़ा हुआ और अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, ओ तो आप मिस सिंघानिया के भाई हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई। रियांश अभी भी बिल्कुल सीधे खड़ा था, उसने अभिमन्यु से हैंडशेक नहीं किया था। उसने अभिमन्यु की तरफ घूरते हुए कहा, मैं तो यहाँ डॉक्टर और उसके भाई होने की हैसियत से हूँ मिस्टर, लेकिन आप यहाँ इतनी देर से किस खुशी में खड़े हैं? क्या रिश्ता है आप दोनों के बीच में? ये मेरी वाइफ है, अभिमन्यु ने बेपरवाही से जवाब दिया। इशिका ये सुनती तो वो हैरान रह जाती, क्योंकि अभिमन्यु हमेशा से यही चाहता था कि उनकी शादी कभी किसी के सामने जाहिर ना हो, और अब वो खुद इशिका को अपनी पत्नी बता रहा था। क्या वाइफ? रियांश ने हैरानी से पूछा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इशिका ने शादी कर ली थी। हाँ, क्या आपको इस बारे में पता नहीं है? फिर तो मैं इसकी तरफ से आपको सॉरी कहना चाहूंगा, क्योंकि इसने आपको बताया नहीं, अभिमन्यु ने जवाब दिया। वो अपनी बातों से रियांश को चिढ़ा रहा था। रियांश ने उसकी तरफ देखकर मुंह बनाया और फिर दूसरी तरफ जाकर इशिका को चेक करने लगा। वहीं इशिका फिर से अपने सपनों की दुनिया में उलझ कर रह गई थी। एक बार फिर से वो उम्र में छोटी हो गई थी और इस बार वो अपने सपने में 3 साल की थी। 3 साल की उम्र में इशिका कांच की खिड़की के दूसरी तरफ खड़ी आयशा को देख रही थी। उसने एक महंगी और सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी और उसे राधिका तैयार कर रही थी। इशिका मुस्कुराते हुए उन्हें खोई हुई निगाहों से देख रही थी। तभी उसने देखा किसी ने उसके कंधे पर कसकर हाथ रखा। वो मालविका थी। मालविका को देखकर इशिका डर गई थी। मालविका ने देखा इशिका राधिका और आयशा को देख रही थी। उसने इशिका को कसकर पकड़ा और उसे घसीटते हुए दूसरी तरफ ले गई। उसने इशिका के गाल पर थप्पड़ लगाया और उसका कान खींचते हुए बोली, आगे से अपनी बुरी नज़र मेरी बेटी पर मत डालना। तुम्हारी किस्मत में ऐसे ही मार खाना और धक्के खाना लिखा है, क्योंकि तुम उस राधिका की बेटी हो और मेरी बेटी आज राजकुमारी की तरह अपने बाप के साये में पल रही है। तुम्हारा इस दुनिया में होना या ना होना एक बराबर है, तो तुम मर भी जाओगी तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा लड़की। इशिका इतनी छोटी थी कि तब तक उसे मालविका के सच्चाई बताने पर भी उसका मतलब समझ नहीं आया। उस दिन के बाद से मालविका उसे बाहर नहीं जाने देती और उसे नीचे बेसमेंट में बंद करके रखती थी। लेकिन इशिका वहां बंद नहीं रहना चाहती थी, वो अपनी किस्मत को बदलकर आगे बढ़ना चाहती थी। इशिका जब 4 साल की हो गई थी तब तक उसे स्कूल भी नहीं डाला गया था। वो आयशा को उसके यहाँ आने वाले प्राइवेट ट्यूटर से नई नई भाषाएं सीखते और पढ़ते देखती। इशिका की मेमोरी इतनी अच्छी थी कि वो जल्दी उन चीज़ों को सीखने लगी, और इस बारे में सबको तब पता चला जब आयशा के गलती करने पर उसने उसे सुधारा था। उसे लगा कि इस पर उसे तारीफ मिलेगी, लेकिन उसके साथ कुछ उल्टा ही हुआ। मालविका उसे खींच कर ले गई और रात के वक्त उसे खाने में स्पेशल केक दिया, जिसे खाने के बाद इशिका एक लंबी नींद में सो चुकी थी। उस रात मालविका ने इशिका को रेड लाइट एरिया में बेच दिया था, लेकिन फिर भी इशिका रोई चिल्लाई नहीं, क्योंकि कम से कम वो लोग उसे मारते नहीं थे और टाइम पर खाना और चॉकलेट देते थे। इशिका की मुलाकात वहां पर एक लड़के से हुई थी जो लगभग 9 साल के करीब था। उसके साथ इशिका ने अच्छा टाइम बिताया था, वो उसकी बहुत परवाह भी करता था। शुरुआत में वो उससे ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन बाद में वो फ्रेंड बन गए थे। वो इशिका को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। तब उसने धीरे से पूछा, तुम भी यहाँ आकर फंस गई हो ना? चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जरूर निकालूंगा, लेकिन मुझे यहाँ से नहीं जाना है, इशिका ने मासूमियत से जवाब दिया। हालांकि वहां आजादी नहीं थी, लेकिन आजादी तो मालविका के पास भी नहीं थी। उल्टा मालविका से अलग वो उसे खाना देते थे, उसकी परवाह करते थे, उसे मारते भी नहीं थे, तो इशिका को वहां मालविका से बेहतर माहौल मिल रहा था। उस लड़के ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों, ये एक अच्छी जगह नहीं है? क्योंकि यहाँ मुझे कोई मारता नहीं है ना, चॉकलेट भी रोज मिलती है, इशिका ने मुस्कुरा कर कहा। इशिका की बातों से वो लड़का समझ गया था कि उसकी पिछली जिंदगी काफी बुरी रही होगी। उसने फिर आगे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इशिका सोच में पड़ गई थी, क्योंकि तब तक तो उसका कोई नाम भी नहीं रखा गया था। मालविका उसे लड़की कहकर बुलाती थी या गालियां देती रहती थी। मेरा कोई नाम नहीं है, वो मुझे गंदी लड़की कहकर बुलाती थी, इशिका ने जवाब दिया। वो लोग ज्यादा बात ही नहीं कर सकते थे। उस लड़के ने महसूस किया कि ईशिका वहां सबसे शांत तरीके से रहती थी। वो उनकी सारी बातें मानती थी और दूसरी लड़कियों से अलग घर जाने की भी जिद नहीं करती थी, इसलिए वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं रखते थे। वहां से भगाने के लिए उस लड़के ने ईशिका को एक दवाई का पैकेट दिया और उन लोगों के खाने में मिलने के लिए कहा, और उसने वैसा ही किया। उस रात वो चैन की नींद सोए हुए थे और सभी बच्चे वहां से भागने लगे, लेकिन ईशिका अभी भी वहीं पर थी। सबको बाहर निकालने के बाद वो लड़का उसके पास आया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो, जल्दी से बाहर निकलो। मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, ईशिका ने मासूमियत से कहा। ठीक है, फिर तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दूंगा, ये लोग अच्छे नहीं हैं और तुम्हें बड़े होने पर समझ आ जाएगा। उस लड़के ने सख्ती से ईशिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ बाहर ले गया। हालांकि वो उसे अपने साथ नहीं ले जा पाया क्योंकि वो छोटा बच्चा था। पुलिस ने उन सबको बाहर निकालने के बाद रेस्क्यू कर लिया था और ईशिका की फैमिली को ढूंढकर उसे सिंघानिया फैमिली में वापस पहुंचा दिया था। ईशिका वापस मालविका के पास नहीं जाना चाहती थी, इसलिए बिछड़ने से पहले उसने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओगे, तुमने मुझसे झूठ बोला। उसकी बात सुनकर उसके पास खड़ा कांस्टेबल हंसकर बोला, तुम बहुत क्यूट हो, ये लड़का तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकता क्योंकि ये तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है। ईशिका रोते हुए बोली, मुझे उसके साथ जाना है, मैं घर नहीं जाना चाहती, मुझे उसके साथ रहना है। वो लड़का उसके पास आया और उसके बालों को सहलाकर बोला, क्या तुम्हें घर जाने से इसलिए डर लगता है क्योंकि वहां तुम्हें मारते हैं? आसपास खड़े पुलिस वालों ने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया क्योंकि अक्सर बच्चों को डांटते हैं तो वो उसे ही मार के तौर पर लेते हैं और छोटी बातों पर मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। भले ही उन्होंने इस बात को सीरियस ना लिया हो, लेकिन वो लड़का ईशिका की आंखों में देखते हुए बोला, ठीक है अभी मैं छोटा हूँ, पर जब बड़ा हो जाऊंगा तब तुम्हें अपने पास लेने के लिए आऊंगा। फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, मैं तुमसे शादी करूंगा इलेवन, फिर हमेशा तुम्हें अपने पास रखूंगा और तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, आई प्रॉमिस। हाँ, वो उसे इलेवन कहकर बुलाता था क्योंकि वहाँ किडनैप की गई बच्चियों में ईशिका इलेवन नंबर पर वहाँ आई थी।
उसके वादा करते ही ईशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो नींद से जाग गई थी। सब कुछ उसके दिमाग में एक स्लाइड शो की तरह चल रहा था। ईशिका को पहले भले ही सब याद ना हो, लेकिन अब उसे सब कुछ अच्छे से याद आ गया था, वो लड़का और उसका ईशिका का इतना फिक्र करना। हालांकि वो अब तक उससे शादी करने के लिए नहीं आया था, पर उसकी याद ईशिका के जहन में हल्की फुल्की पहले से ताज़ा थी। उसके बारे में सोचकर ईशिका के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। वो उससे प्यार नहीं करती थी और उतनी कम उम्र में किसी को भी प्यार का मतलब समझ नहीं आता, लेकिन ईशिका इतना समझ सकती थी कि वो उसकी बहुत फिक्र करता था और बहुत बार उसने उसे वहां बचाया भी था। ईशिका ने मन ही मन कहा, वो तो अब तक भूल भी गया होगा, न जाने कहाँ होगा। अचानक ईशिका को होश में देखकर अभिमन्यु की नज़र उस पर पड़ी। उसने तुरंत पूछा, आपको कुछ चाहिए मिस सिंघानिया? ईशिका उसकी बात का कोई जवाब देती उससे पहले रयांश बीच में बोल पड़ा, मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा लोगों को अब इस कमरे से बाहर चले जाना चाहिए, उनका यहाँ कोई काम नहीं है, वैसे भी मुझे पेशेंट की जाँच करनी है। लेकिन मैं एक्स्ट्रा नहीं हूँ, अभिमन्यु ने तुरंत जवाब दिया। रयांश ने भौहें उठाकर कहा, यहाँ डॉक्टर, पेशेंट और नर्स के अलावा सभी एक्स्ट्रा ही है, वैसे भी मुझे चेकअप करना है, इसे चेंज करवाना है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए। इसे चेंज करवाना है और मैं बाहर जाऊँ, तो फिर आपका यहाँ क्या काम है डॉक्टर? अभिमन्यु ने सख्ती से पूछा। डॉक्टर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका पेशेंट मेल है या फीमेल, वो बस अपना काम करता है, फिर भी तुम्हें रुकना है तो तुम्हारी मर्जी, रयांश ने कंधे उचकाकर कहा और फिर नर्स को इशारा किया ताकि वो ईशिका को चेंज करवा दे। रयांश दूसरी तरफ पलट गया था जबकि नर्स ईशिका के पास आई। उसने ईशिका की टी शर्ट को हल्का सा उठाया। अभिमन्यु की नज़र ईशिका पर थी। जैसे ही टी शर्ट उठाने पर उसने उसकी कमर को देखा, उसने तुरंत अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली और धीरे से कहा, ठीक है मैं बाद में आता हूँ। कमरे से बाहर निकलते ही अभिमन्यु ने देखा कि पृथ्वी अंदर की तरफ झाँक रहा था। उसने सख्ती से कहा, तुम अंदर क्या देख रहे हो? अंदर क्या चल रहा था उससे अनजान पृथ्वी थोड़ा कन्फ्यूज हो गया। उसने कुछ पल रुक कर बातचीत का टॉपिक बदलते हुए कहा, सर एक गड़बड़ हो गई है, मिस सिंघानिया इस वक्त का ट्रेंडिंग टॉपिक है। इतना कहकर पृथ्वी ने अपना मोबाइल अभिमन्यु को दे दिया था। अभिमन्यु ने देखा आशीष का बेटा माहिर अपना इंटरव्यू दे रहा था और लोग उसे घेर कर बैठे थे। हालांकि वो काफी नर्वस नजर आ रहा था। अभिमन्यु उस इंटरव्यू को देखने लगा। वहां माहिर ने अपना स्टेटमेंट देते हुए कहा, मेरे डैड एक अच्छे इंसान नहीं थे, पर वो इस तरह मरना भी डिजर्व नहीं करते थे। मेरे कजिन ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, वो गैम्बलिंग करते थे और पैसा हारने पर उससे पैसे मांगने के लिए जाते थे। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया, अनजाने में मेरी कजिन के हाथों उनकी मौत हो गई। उसने ये जानबूझकर नहीं किया तो मैं उसकी मदद करूंगा ताकि उसे ज्यादा सजा ना हो। सभी रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू ले रहे थे। अचानक उनमें से एक ने कहा, लेकिन सुना है कि आपकी कजिन बहुत ही घटिया बहाना लेकर जमानत करवाना चाहती है ताकि जमानत के बाद वो भी बाकी लोगों की तरह दूसरे देश में भाग जाए और फिर ये केस अटक कर रह जाएगा। क्या एक बार फिर पैसों की वजह से किसी को इंसाफ नहीं मिल पाएगा?
इसी के साथ इशिका के खिलाफ हैशटैग्स ट्रेंड करने लग गए। सब उसे गलत समझ रहे थे। तब पूरा मामला समझने के बाद अभिमन्यु ने पृथ्वी से कहा, कोई ये सब पैसे देकर जानबूझकर करवा रहा है, पता करो कि इसके पीछे कौन है। पृथ्वी ने उसकी बात पर हामी भरी। उन्होंने देखा कि कुछ रिपोर्टर्स हॉस्पिटल की तरफ आ रहे थे। अभिमन्यु ने जल्दी से कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई उसे परेशान करे, हो सके यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा दो, इस एरिया में एक भी रिपोर्टर नजर आया तो अच्छा नहीं होगा। पृथ्वी वहां से अभिमन्यु के ऑर्डर्स फॉलो करने चले गए, तो वहीं अभिमन्यु वापस इशिका के पास चला गया था। उसने देखा रेयांश जानबूझकर इशिका के पास में बैठा हुआ था। इशिका समझ सकती थी कि रेयांश ऐसा क्यों कर रहा है। उसने गहरी सांस ली और रेयांश से कहा, रेयांश तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ, क्योंकि वो शख्स तुम्हें अपना हस्बैंड बता रहा है और तुमने शादी कर ली और मुझे बताया नहीं। लगता है कि तुम हमारे बीच के रिश्ते को भूल चुकी हो, रेयांश ने सिर हिलाकर कहा। मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इशिका ने धीरे से जवाब दिया। रेयांश ने भी उस मैटर को ज्यादा नहीं खींचा। उसने इशिका की बात पर हामी भरी और फिर अचानक से पूछा, अच्छा तुम क्या कोई सपना देख रही थी? तुम नींद में बड़बड़ा रही थी कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। हाँ, मैंने सपना देखा था, उसमें मैं बस 3 या 4 साल की थी, इशिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया। रेयांश के पूछने पर इशिका को फिर से उस लड़की की याद आई जिसने उसे एक वादा किया था कि वो उसे इन सबसे बचाएगा। उसने इशिका को एक उम्मीद दी थी। उस लड़के के अलावा भी इशिका ने बहुत कुछ देखा था। अचानक वो उसे याद आया तो उसने धीरे से बड़बड़ाकर कहा, मालविका ने सपने में ऐसा क्यों कहा कि मेरी बेटी राजकुमारी की तरह पल रही है?